एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथ सार में आज हम गोता लगा रहे हैं रीटा बुलविंकल के उपन्यास हेडशॉट की दुनिया में। ये उनका पहला उपन्यास है।
हाँ, और आते ही काफी चर्चा में रहा।
बिल्कुल, बुलविंकल मतलब समकालीन अमेरिकी साहित्य में एक ऐसी आवाज है जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।
सही कहा।
उनका पिछला काम, वो कहानी संग्रह बेली अप, काफी सराहा गया था, प्राइज भी जीता था उसने।
हाँ, प्लेंटीवुड रिव्यू प्राइज।
उनकी लेखनी की पहचान है उसका सीधापन, एक तरह का विसरल गद्य जो शरीर और उसकी संवेदनाओं पर बहुत फोकस करता है।
वो किशोरावस्था, स्त्रीत्व, हिंसा जैसे विषयों को बहुत बेबाकी से उठाती हैं, बिना किसी लाग लपेट के।
और उनके काम में अक्सर अति यथार्थवाद और थोड़ा डार्क ह्यूमर वो भी मिलता है ना? कैलिफोर्निया वाली पृष्ठभूमि का भी असर दिखता है।
हाँ बिल्कुल। और हेडशॉट जो मेरे ख्याल से 2023 या 24 में आया, इसकी तुलना तो जॉयस कैरल ओट्स और ओटेसा मॉशविक जैसे बड़े नामों से हुई।
वाकई, ये तो बड़ी बात है।
हाँ, और इसे सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि जैसे आपने कहा समकालीन कथा साहित्य में एक जरूरी दखल माना जा रहा है, खासकर महिला एथलीटों और टीनेज लड़कियों के चित्रण को लेकर।
और ये उस समय भी आया जब वो बहस चल रही थी कि महिलाएं उन खेलों में आ रही हैं जो पहले पुरुषों के माने जाते थे।
बिल्कुल, तो उस सांस्कृतिक माहौल से भी इसका जुड़ाव है।
तो आज हम कोशिश करेंगे इस उपन्यास की परतें खोलने की, मतलब कहानी को समझेंगे, किरदारों के सफर को, और वो जो बड़े सवाल ये उठाता है उन पर बात करेंगे।
हाँ, और ये भी कि बुलविंकल भाषा और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कैसे करती हैं वो तनाव रचने के लिए।
चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है निवादा के रेनो शहर।
हाँ, रेनो। कल्पना कीजिए, एक वीकेंड का टाइम है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं शायद एक शाम की ही कहानी है ये। माहौल एकदम चार्ज्ड है।
अच्छा, क्या हो रहा है वहाँ?
वहाँ टीनेज लड़कियों की एक नेशनल या अमेच्योर लेवल की बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है, और पूरी कहानी इसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मैचों के आसपास घूमती है।
ओके, और इस सब के बीच में कौन है, मतलब मुख्य किरदार?
8 युवा महिला मुक्केबाज हैं, डालिया, थेरेसा, इनेस, केट, लैला, अमांडा, ब्री और डीना। ये 8 नाम है,
8 लड़कियां।
हाँ, और हर एक की अपनी कहानी है, अपने सपने, अपने शायद पुराने जख्म और जीतने की जबरदस्त इच्छा। उपन्यास किसी एक हीरोइन पर फोकस नहीं करता।
अच्छा, तो ये एक तरह से सामूहिक चित्र है।
बिल्कुल, इन 8ों की महत्वाकांक्षाओं, उनके डर, उनके जज्बे का एक मिला जुला पोर्ट्रेट है ये
दिलचस्प है। और कहानी की बनावट, आपने कहा टूर्नामेंट के इर्द गिर्द है।
हाँ, कहानी का ढांचा बिल्कुल टूर्नामेंट ब्रेकेट जैसा है, क्वार्टर फाइनल्स, फिर सेमीफाइनल्स और आखिर में फाइनल।
इससे क्या होता है, कहानी पर क्या असर पड़ता है?
इससे एक तरह की, क्या कहते हैं, अनिवार्यता या इनएविटेबिलिटी का एहसास होता है, जैसे सब कुछ तय है। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, दायरा सिकुड़ता जाता है, तो पाठक भी वो बढ़ता हुआ दबाव महसूस करता है।
और उस जगह का माहौल कैसा है? बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, जाहिर है तनाव तो होगा ही।
माहौल बहुत घना बुना गया है। सोचिए, वो जिम की तेज सफेद फ्लोरोसेंट लाइट जो हर चीज को एकदम साफ दिखाती है, हवा में पसीने की गंध, थोड़ी एंटीसेप्टिक की महक और एक अनकही उम्मीद।
और तनाव?
हाँ, बहुत ज्यादा तनाव। फिर वो गुमनाम से होटल के कमरे हैं जहां लड़कियां अकेली होती हैं, और सबसे बढ़कर रिंग का वो चौकोर दायरा, एक बंद जगह जहां सब कुछ दाव पर है। ये सब मिलके एक घुटन भरा लेकिन साथ ही बिजली की तरह चार्ज्ड माहौल बनाते हैं।
तो ये सिर्फ ये सवाल नहीं है कि कौन जीतेगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं गहरे सवाल उठाता है, जैसे इस तरह की जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा है उसकी असल कीमत क्या है,
और क्या चीज इन लड़कियों को इस हद तक जाने पर मजबूर करती है, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से इतना ज्यादा, जहां हिंसा भी एक तरह से ठीक मानी जाती है।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ रिंग की लड़ाई नहीं है, हर लड़की अपने अंदर भी एक लड़ाई लड़ रही है, अपने शरीर से, अपनी यादों से, शायद पुराने आघातों से,
परिवार की उम्मीदें, समाज का दबाव।
हाँ, और अपना भविष्य कैसा होगा इसकी चिंता। और यहीं पर वो स्त्री शक्ति का एक जटिल पहलू सामने आता है, मतलब एक ऐसी दुनिया में ताकतवर होने का मतलब क्या है, जो ताकत चाहती भी है और शायद उससे डरती भी है।
रिंग में वो ताकतवर है, लेकिन क्या बाहर समाज उन्हें वैसे ही देखता है?
यही सवाल है।
आपने कहा कोई एक मुख्य पात्र नहीं है, ये एक सामूहिक चित्र है, इससे पढ़ने वाले पे क्या असर पड़ता है? क्या हम किसी एक से पूरी तरह जुड़ नहीं पाते?
ये अच्छा सवाल है। देखिए, ये सच है कि हम किसी एक लड़की की कहानी में पूरी तरह नहीं डूबते, लेकिन लेखिका हमें हर पात्र के मन में उसके दिल में झांकने का मौका देती हैं, बारी बारी से।
अच्छा,
तो उससे एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा फैली हुई तस्वीर बनती है। हाँ, कुछ किरदार हैं जो थोड़ा ज्यादा उभर कर आते हैं, जैसे एक रोज का जिक्र है।
हाँ,
उसमें एक खामोशी सी है पर अंदर बहुत तीव्रता है। उसका घर का माहौल ठीक नहीं है, उथल पुथल भरा। तो मुक्केबाजी उसके लिए शायद एक एस्केप भी है और शायद अपनी भड़ास निकालने का तरीका भी। उसका गुस्सा कंट्रोल्ड है, तकनीक अच्छी है और शायद रिंग ही वो अकेली जगह है जहां उसे लगता है कि उसका शरीर सिर्फ उसका है, किसी और की उम्मीदों का बोझ नहीं।
ये बात बहुत मार्मिक है, शारीरिक स्वायत्तता की तलाश, खासकर टीनेज लड़कियों के लिए। क्या बाकी किरदार भी ऐसे ही अंदरूनी कश्मकश से गुजरते हैं?
हाँ, काफी हद तक। जैसे केट है, वो एक अमीर सुविधा वाली पृष्ठभूमि से है।
अच्छा, तो उसके लिए मुक्केबाजी क्यों?
शायद उसके लिए ये एक तरह का विद्रोह है, घर की उम्मीदों के खिलाफ, खुद को साबित करने की एक कह सकते हैं छटपटाहट। उसके अंदर वो तर्क और जो इंस्टिंक्ट होती है उसके बीच एक लड़ाई चलती रहती है। वो जीतने और सही होने के बीच फंसी हुई है।
जीतने और सही होना अलग चीजें हैं, ये तो काफी गहरा विचार है, खासकर जब हम प्रिविलेज और मेरिट की बात करते हैं।
हाँ, उसका संघर्ष यही दिखाता है कि जीत हमेशा नैतिक रूप से सही होने का सबूत नहीं होती।
और कोई किरदार जो ध्यान खींचता हो?
आर्टेमिस है, नाम ही उसका ग्रीक देवी वाला है। उसके लिए बॉक्सिंग जैसे कोई रस्म हो, कोई अनुष्ठान। उसे शारीरिक लड़ाई में भी एक आध्यात्मिक अनुभव मिलता है।
दिलचस्प।
फिर डालिया है, उसके तो खून में ही बॉक्सिंग है, पूरा परिवार मुक्केबाज, तो उस पर अपने पिता और पुरखों की विरासत का बहुत भारी बोझ है।
तो उसकी लड़ाई अपनी पहचान बनाने की है।
हाँ, उस विरासत के साए से निकलकर अपनी पहचान बनाने की। थेरेसा है, जो बहुत धार्मिक है। उसे बॉक्सिंग के अनुशासन और दर्द में ही एक तरह की शांति मिलती है, वो आस्था और हिंसा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है।
और इनेज, आपने उसका भी नाम लिया था?
इनेज उसमें एक बिल्कुल कच्ची जंगली सी उरिया है, गहरा गुस्सा है और नियंत्रण पाने की जबरदस्त इच्छा। वो लड़ाई के उस आदिम प्रवृत्ति का प्रतीक है जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होती है।
और बाकी लड़कियां, लायला, अमांडा, ब्री, डीना,
वो सब मिलकर उस अनुभव के अलग अलग पहलू सामने लाती हैं। कहीं पैसे की तंगी का दबाव है, कहीं पहचान की तलाश है, कहीं सिर्फ खेल से प्यार है। ये सब उस पूरी तस्वीर को मुकम्मल करते हैं।
इन किरदारों के आपसी रिश्ते कैसे हैं? क्या उनमें दोस्ती होती है या सिर्फ दुश्मनी?
वैसी पारंपरिक दोस्ती तो नहीं है। रिंग के अंदर तो एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन रिंग के बाहर उनमें एक अजीब सा अनकहा सा रिश्ता है।
कैसा रिश्ता?
वो एक दूसरे के शरीर को, उनकी कमजोरियों को, ताकतों को शायद किसी और से बेहतर समझती हैं। ये उस साझा दर्द, साझा त्याग, साझा सपने से पैदा हुई एक अजीब सी नजदीकी है, एक खास तरह की बिरादरी।
समझ रही हूँ।
और हाँ, इस पूरी कहानी में पिताओं की भूमिका बहुत अहम है।
पिताओं की कैसे?
वो कोच हैं, मोटिवेटर हैं, लेकिन कई बार वो दबाव का स्रोत भी हैं। उनमें कहीं ना कहीं अपनी बेटियों के जरिए अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की वो भावना भी दिखती है, वाइकेरियस एंबिशन जैसे कहते हैं।
हाँ, बेटी पिता के रिश्ते तो वैसे भी जटिल होते हैं।
बिल्कुल, और यहाँ तो वो और भी ज्यादा उलझे हुए और इमोशनली चार्ज्ड हैं। पिता का अपनी बेटी को रिंग में लड़ते देखना, उसमें गर्व है, चिंता है, उम्मीद है, बोझ है, सब कुछ मिला जुला है।
ये वाकई उपन्यास का एक शक्तिशाली पहलू लगता है। चलिए, अब कहानी के सफ़े पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टूर्नामेंट कैसे बढ़ता है?
तो शुरुआत होती है वजन जांच से, मैच से पहले की रस्मों से। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव, हर लड़की अपने आप में गुम, बिल्कुल अकेली। फिर आते हैं क्वार्टर फाइनल। यहाँ कुछ अहम मैच होते हैं, जैसे डालिया और थेरेसा का मैच, विरासत बनाम आस्था, या इनेस और केट का जंगली प्रवृत्ति बनाम सधावा दिमाग।
और लेखिका इन्हें कैसे दिखाती हैं?
बुलविंकल का कैमरा जैसे दोनों के बीच तेजी से घूमता है।
हाँ।
हमें उनके डर, उनकी प्लानिंग, उनकी उम्मीदें, सब कुछ एक साथ दिखता है।
हाँ।
और इस राउंड के बाद 8 में से 4 बाहर हो जाती हैं।
हाँ।
दुनिया और छोटी हो जाती है।
और सेमीफाइनल में
तनाव और बढ़ जाता होगा।
हाँ, बिल्कुल, यहाँ दाव और ऊंचे हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव एकदम चरम पर, शारीरिक और भावनात्मक थकान अब साफ दिखने लगती है। दर्द सहने और दिमागी तौर पर मजबूत बने रहने पर ज्यादा जोर होता है। और यहाँ बुलविंकल का गद्य और ज्यादा शारीरिक हो जाता है। खून, पसीना, टूटती सांसें, मांसपेशियों का खिंचाव, पाठक ये सब महसूस कर सकता है।
और फाइनल का सपना अब बिल्कुल करीब।
हाँ, बस एक कदम दूर, और उसकी गर्मी हर पल महसूस होती है।
और फिर आता है उपन्यास का केंद्र, फाइनल।
हाँ, क्लाइमैक्स, आखिरी दो योद्धाओं के बीच की निर्णायक लड़ाई। ये उपन्यास का सबसे लंबा और सबसे गहरा हिस्सा है।
अच्छा, यहाँ जैसे वक्त धीमा हो जाता है। बुलविंकल सिर्फ शारीरिक दांव पीच नहीं दिखाती, बल्कि दोनों फाइनलिस्ट के मन के अंदर जो मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है उसे पूरी शिद्दत से उभारती हैं।
मतलब उनके विचारों और भावनाओं को।
हाँ, उनकी भयानक थकावट, बर्दाश्त से बाहर होता दर्द, बीच बीच में कौंधती यादें और जीतने की वो अदम्य इच्छा, हम इन सबके गवाह बनते हैं। जीत अब सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है।
तो फिर क्या है?
सवाल ये बन जाता है कि इस जीत या हार का उनके बाकी जीवन के लिए क्या मतलब होगा? ये पल उनके वजूद को कैसे तय करेगा?
और लड़ाई खत्म होने के बाद क्या कोई साफ विजेता होता है? कोई खुशी का माहौल?
यही उपन्यास एक और दिलचस्प मोड़ लेता है। मैच के बाद का जो सीन है वो बहुत शक्तिशाली है। शारीरिक चोटें साफ दिख रही हैं और अंदर एक भावनात्मक खालीपन है। जब भीड़ छट जाती है, लाइटें धीमी हो जाती हैं, तो बस दो बहुत थकी हुई लड़कियां रह जाती हैं। उपन्यास दिखाता है कि यहाँ कोई आसान बेदाग जीत नहीं है। रिंग की उस क्रूरता के बाद वो वापस अपनी साधारण चोट खाई हुई इंसानियत में लौट आती है।
ये तो बहुत मार्मिक है।
हाँ, और एक तरह से लड़ाई खत्म होने के बाद भी उनकी असली लड़ाई शायद जारी रहती है।
ये उपन्यास वाकई कई परतों वाला है। इसके मुख्य विषयों पर थोड़ी और बात करते हैं। सबसे पहले तो वो स्त्री शक्ति वाला विरोधाभास।
हाँ, कि समाज उनसे ताकतवर होने की उम्मीद करता है पर उनकी ताकत को खतरनाक भी मानता है। और रिंग की जो नियंत्रित हिंसा है वो उनके लिए अपनी भावनाओं को निकालने का एक स्वीकृत तरीका बन जाता है।
और इसमें शरीर की भूमिका, वो तो केंद्रीय है।
बिल्कुल, शरीर एक बर्तन भी है जिसे साधना है, दर्द सेना है, और वही शरीर एक हथियार भी है। अनुशासन, दर्द, ताकत, सीमाएं, सब शरीर के जरिए ही अनुभव होता है।
दूसरा अहम मुद्दा आपने बताया था, किशोरावस्था और पहचान का।
हाँ,
मुक्केबाजी इन लड़कियों के लिए खुद को खोजने का, अपनी हदें जानने का और अपनी ताकत, यहाँ तक कि अपनी हिंसा की क्षमता को समझने का एक मंच बन जाती है। ये लड़कीपन का एक बहुत अलग, बहुत कठोर और अकेला चित्रण, पारंपरिक हिम्मत से बिल्कुल हटकर।
और पारिवारिक उम्मीदें, खासकर पिताओं की, और क्लास का असर,
वो तो लगातार महसूस होता है। किसी के लिए बॉक्सिंग गरीबी से निकलने का रास्ता है, किसी के लिए अमीर घर की घुटन से विद्रोह, विरासत का बोझ या उसे साबित करने का दबाव, ये सब उनके किरदारों को, उनके फैसलों को गहराई से असर डालते हैं।
और हिंसा का चित्रण, क्या उपन्यास उसे ग्लोरीफाई करता है?
नहीं, ग्लोरीफाई तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन वो नियंत्रित हिंसा को एक जटिल चीज की तरह देखता है। वो आत्म अभिव्यक्ति का जरिया हो सकती है, संवाद का जरिया, कुछ किरदारों के लिए तो एक रस्म या इलाज जैसा भी।
अच्छा,
उपन्यास उसकी क्रूरता दिखाता है लेकिन उसके बदलने की क्षमता से इनकार भी नहीं करता, और वो रिंग की स्वीकृत हिंसा और बाहर की दुनिया की बेतरतीब हिंसा के बीच का फर्क भी दिखाता है।
प्रतिस्पर्धा और जुड़ाव का वो अजीब सा रिश्ता भी है।
हाँ, वो एक दूसरे को हराना चाहती हैं, फिर भी उनके बीच एक समझ है, एक बंधन है जो शायद बाहर वाला कोई नहीं समझ सकता। जैसे एक ही आग से निकले हों, उस तरह की बिरादरी का एहसास।
और कहीं ना कहीं ये अमेरिकी सपने और मेरिटोक्रेसी वाले विचार पर भी सवाल उठाता है।
हाँ बिल्कुल, क्या मुकाबला वाकई निष्पक्ष हो सकता है जब सबकी शुरुआत, सबके संसाधन, सबके भावनात्मक बोझ इतने अलग अलग हों?
अब जरा बुलविंकल की शैली पर आते हैं। उनका लिखने का अंदाज कैसा है? नरेटर कौन है?
वो एक खास तरह का थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव इस्तेमाल करती हैं, जिसे रोविंग थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट कहते हैं।
अच्छा, सबके मन में।
हाँ, हाँ, उनकी सोच, उनकी भावनाएं हमारे सामने रख सकता है। इससे हमें एक ही घटना कई एंगल से दिखती है, कहानी में एक गहराई आती है। पाठक किसी एक से बंधा नहीं रहता बल्कि पूरे टूर्नामेंट के मनोवैज्ञानिक माहौल को महसूस कर पाता है।
और वो टूर्नामेंट ब्रैकेट वाली संरचना, उसका क्या लिटरेरी असर होता है?
वो सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का ढांचा नहीं है, वो अपने आप में एक लिटरेरी डिवाइस है। वो कहानी में एक अनिवार्यता का भाव लाती है, जैसे हर अगला कदम तय है। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते हैं, संभावनाएं कम होती जाती हैं, दुनिया सिकुड़ती जाती है और तनाव बढ़ता जाता है। ये पाठक को भी उसी प्रेशर में ले आता है।
और गद्दे के बारे में आपने शुरू में विसरल कहा था, उसे थोड़ा और समझाएंगे?
हाँ, उनका गद्य सीधा हमारी इंद्रियों पर, हमारे सेंसेस पर असर करता है। बहुत सटीक है, बिना फालतू सजावट के, लेकिन बहुत ताकतवर।
जैसे?
लड़ाई के सीन में वो छोटी चोट करने वाले वाक्य इस्तेमाल करती हैं जो बॉक्सिंग के रिदम की नकल करते हैं। एक्शन वाले पैराग्राफ छोटे और तेज होते हैं, जबकि जब वो किरदारों के अंदर के विचारों में जाती हैं तो वाक्य ज्यादा गहरे और लंबे हो जाते हैं।
और भाषा, कल्पना कैसी है?
इमेजिनरी बहुत सजीव है, कई बार सिनेस्थेटिक लगती है, मतलब आप जैसे घूसों की आवाज महसूस कर सकें या दर्द का स्वाद चख सकें। यह पाठक को सीधे रिंग के अनुभव में खींच लेता है।
क्या उपन्यास में प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म का भी इस्तेमाल है?
हाँ बिल्कुल है। रिंग खुद एक बड़ा प्रतीक है, एक कसौटी, एक क्रूसिबल, जहां किरदार परखे जाते हैं, बदलते हैं। वो एक बंदिश भी है और संभावनाओं का मैदान भी।
और कुछ?
हेडगियर है, वो सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन साथ ही वो बाहरी दुनिया से एक दूरी भी बनाता है। और खुद टाइटल हेडशॉट, ये बॉक्सिंग का टर्म तो है ही, सिर पर लगने वाला वार।
हाँ,
लेकिन ये उपन्यास के तरीके की तरफ भी इशारा करता है। हर किरदार का एक तीखा भेदने वाला मनोवैज्ञानिक चित्र खींचना, एक तरह का मेंटल हेडशॉट।
इस उपन्यास को पढ़ने का अनुभव कैसा है, मतलब पाठक पर क्या असर छोड़ता है
ये कह सकते हैं थका देने वाला, लेकिन साथ ही झकझोर देने वाला अनुभव है। ये कोई आसान जवाब या सुकून देने वाले अंत नहीं देता। ये युवा महिलाओं, उनकी ताकत, उनकी आक्रामकता, उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में जो बनी बनाई धारणाएं हैं उनको तोड़ता है
और हमें सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, कि हम प्रतिस्पर्धा को, शारीरिक संघर्ष को और ताकत के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं, खासकर जब वो महिलाओं से जुड़ा हो।
और इसका स्थायी प्रभाव क्या है? ये कहानी हमें क्या देकर जाती है?
मेरे ख्याल में ये टीनेज लड़कियों की जो अनदेखी जटिलताएं हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनको सामने लाता है। ये स्पोर्ट्स नॉवल और कमिंग ऑफ एज कहानियों की सीमाओं को भी थोड़ा आगे धकेलता है।
और शायद ये भी कि सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है।
बिल्कुल, सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर, शक और उम्मीदों से होती है। रिंग तो उस अंदरूनी लड़ाई का बस एक बाहरी मंच बन जाता है।
कुछ पंक्तियां या विचार जो इस उपन्यास से याद रह जाते हैं वो वाकई गहरे हैं, जैसे रोज का वो एहसास कि रिंग ही एकमात्र जगह जहां शरीर पूरी तरह अपना लगता है।
हाँ, शारीरिक स्वायत्तता की वो कितनी तीव्र पुकार है उसमें, या केट का वो संघर्ष कि जीतना और सही होना अलग चीजें हैं, नैतिकता और सफलता का वो तनाव,
और वो दृश्य जहां लड़ाई के बाद वे बस थकी हुई लड़कियां रह जाती हैं।
हाँ, वो उनकी साझा चोट खाई हुई इंसानियत को दिखाता है, बहुत मार्मिक है वो।
चोट लगने के डर और उसे झेल जाने के बीच का फासला तय करना, ये भी एक अहम बात है।
हाँ, वो आत्मखोज का एक रूपक बन जाता है, और ये एहसास कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी लड़ने की जरूरत बनी रहती है, ये दिखाता है कि रिंग के मुद्दे जीवन के मुद्दों से अलग नहीं है।
और वो सेनानियों के बीच एक दूसरे के शरीर का वो गहरा ज्ञान।
हाँ, वो प्रतिस्पर्धा के अंदर छिपे उस अनोखे रिश्ते, उस अनकहे बंधन की तरफ इशारा करता है। वो दुश्मन हैं, पर एक दूसरे को उस स्तर पर जानती हैं जहां शायद शब्द भी कम पड़ जाएं।
तो अंत में अगर हम इस उपन्यास के सार को एक या दो लाइनों में समेटना चाहें तो क्या कहेंगे? ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है?
शायद ये हमें याद दिलाती है कि ताकत के कई रूप होते हैं, और सबसे सच्ची ताकत अक्सर बाहरी जीत में नहीं, बल्कि अंदर के संघर्षों का सामना करने और अपनी शर्तों पर अपनी पहचान बनाने में होती है।
और ये भी कि युवा महिलाओं का आंतरिक जीवन कितना जटिल, कितना गहरा और कितना अनदेखा होता है, जिसे समझने के लिए हमें सतही धारणाओं से आगे जाना होगा।
बिल्कुल सही।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।